कथायां पीयूषं प्रवचन कलायां च पटुतां सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ॐ नारायण 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 वेदांत विद्या है। विद्या जो पहले से मौजूद है उसको दोबारा ज्ञान कराती। इन्वेंशन और डिस्कवरी, तो ये आत्मा का इन्वेंशन नहीं करती है ब्रह्म विद्या, ये आत्मा को का डिस्कवरी करती है, डिस्कवर करती है। जो उसके ऊपर आवरण आ गया है, जिस वजह से आत्मा आत्मा नहीं मालूम पड़ रहा, उस वजह को हटाने के लिए वेदांत विद्या है। अब बोले नहीं, हम तो कुछ न कुछ आवरण तो इस पर लगा के रखेंगे, ये सूती चद्दर हटा दो, मखमली चद्दर बिछा दो, देखो कितनी अच्छी लगती है। तो चद्दर के नीचे तो वो ढकी हुई है, चाहे सूती हो चाहे मखमली हो, वस्तु तो नजर आ नहीं रही है। तो आप तो मखमल का आनंद ले रहे हो सूत के बजाय। तो ये वेदांत विद्या तो नंगों की विद्या है। नंगा कर, सत्य को बिल्कुल नंगा कर दो, कोई उसके ऊपर आवरण स्वीकार्य नहीं है। तो श्रृंगार रस में तो इसको अच्छा मानते ही हैं, लेकिन ऐसे ही ब्रह्म विद्या में भी इसी को अच्छा मानते हैं। अगर आवरण रहता है तो आकर्षण भले ही बढ़े लेकिन उसका उपभोग नहीं होता। इसीलिए ये संन्यास आदि की जो विधा रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि आवरण जितने हटा दो उतने अच्छा है। चलो बाहर का एक कपड़ा हटा दिया हमने, दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो उस कपड़े से तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन जब आप लाल कपड़ा पहनते हो तो आपको याद रहती है कि हमने ये क्यों पहना है, किस वजह से, किसके लिए पहना है, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आत्मा का साक्षात्कार करें, जो पहले से है उसी को दोबारा देखना है। कहां देखना है? बोले जागृत अवस्था में देखना है। जागृत में तो 24 घंटे में प्राय अधिकांश सोने का समय निकाल के जागृत अवस्था ही में रहते हैं, तो जागृत में तो रहते हैं, आत्मा तो कहीं दिखाई पड़ता नहीं है। तो बोले अन्य रूप में नहीं देखना है, स्वरूप से देखना। अन्य रूप में भी देखेंगे, समष्टि का जब विचार करेंगे तो अन्य रूप से भी मालूम पड़ेगा, लेकिन पहले स्वरूप से देखो। तो कैसे देखें? तो बोले अपनी जागृत अवस्था को 7 हिस्सों में डिवाइड कर लो। जागृत अवस्था का अभिमानी, बुद्धि की बहिर्मुखता, 7 हिस्से, 19 मुख, स्थूल विषय और नाम विश्व, इन्हीं को जनरलाइज कर दो सारे संसार में, तो इसी का विश्व का नाम वैश्वानर हो जाएगा, विराट हो जाएगा। सिर्फ नाम ही बदलेगा। अब चलो, कुछ कुछ तो पकड़ में आया कि जागृत में जो अभिमानी है असल में ये आत्मा ही है। कुछ लोग कहते हैं, शायद उस दिन मैंने बोला भी था कि मैं नहीं, मैं ये वाला मैं नहीं, आत्मा वाला मैं बोला था ना, तो ये वाला मैं नहीं, ये वाला मैं, अरे वो मैं एक ही है। ये तो इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है कि उसमें गलती से हमने उस कुछ कुछ का कुछ समझ रखा है। मैं दो नहीं है, तो उसके लिए कल बताया था आपको कि 3 विभाग कर लो, एक जागृत पुरुष, एक जागृत अभिमानी और एक जागृत दृष्टा। अब अपने को आप क्या समझे प्रतिदिन? बोले जागृत पुरुष हूं व्यवहार के लिए, जागृत अभिमानी हूं आनंद के लिए, और जागृत दृष्टा हूं आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के। तो बोले तीनों एक साथ तो नहीं हो सकते? बोले हां नहीं हो सकते। तो एक को पकड़ो छोड़ो, दूसरे को पकड़ो छोड़ो, फिर तीसरे को पकड़ो, छोड़ना तो अभी उसमें भी है लेकिन अभी वहीं बैठ जाओ। मैं जागृत दृष्टा हूं, पूरी जागृत अवस्था का दृष्टा हूं। अच्छा, आपने नाम सुने होंगे, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, ये पारिभाषिक शब्द हैं, लेकिन एक दफे ये अर्थ समझ में आ जाए तो फिर बहुत चीज क्लियर हो जाती है। अधिभूत माने भूत रूप, अधि माने मैं, भूतों में जो रहता है वो अधिभूत है। तो भूत तो हो गया शरीर, इसमें जो रहता है कौन रहता है? आत्मा ही तो रहता है। तो इसलिए ये शरीर को भी गाली देने की जरूरत नहीं है, ये आत्मा ने इसको अपना घर मान लिया है तो रहने दो इसमें। आप अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले, गालिब साहब कह गए हैं। क्या बाय डिजाइन आपने जन्म लिया या बाय डिजाइन आप मरोगे? अपनी खुशी न आए थे न अपनी खुशी चले, तो ये तो जैसे भी हो आ गया। इसलिए गाली देने से कोई, इससे जो व्यवहार करना है उसको व्यवहार कर। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार यदि कोई व्यवहार करता है तो कोई पाप नहीं लगता और न वो परमार्थ में बाधक है। अति व्यवहार तो बाधक है क्योंकि पकड़ लेता है, व्यवहार बाधक नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम, शरीर रक्षा के लिए जो आप करना चाहो करो, उससे पाप नहीं लगता है। तो ये स्थूल शरीर क्या है? अद्भुत है। इसमें एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में क्या चीजें आती हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां। अच्छा मान लो ये 19 चीजें जो हैं, यही तो 19 मुख थे ना इसके आत्मा के। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है यही इसका मुख है, माने आत्मा जो है ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करता है। एक आदमी मर गया तो अब तक तो खा रहा खाता था, पीता था, जो कुछ भी करता था इंद्रियों से ही करता था ना, और अंतःकरण उसके साथ रहता था। अब मर गया तो क्या हो गया? वो सूक्ष्म शरीर तो निकल गया उसका। तो निकलने के बाद जो ये हड्डी रह गई है, हड्डी मांस जो कुछ भी रह गया, ये है स्थूल शरीर। तो इसको तो कोई मैं कहता नहीं है, चेतना विशिष्ट स्थूल शरीर को मैं कहते हैं सब। सूक्ष्म शरीर सहित इस अधिभूत स्थूल शरीर को मैं कहते हैं तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा तो सूक्ष्म शरीर हुआ भोग का साधन और स्थूल शरीर हुआ कर्म का साधन। जैसे बहुत से लोग जल्दी मर जाते, आत्महत्या कर ली, एक्सीडेंट से मर गए, तो प्रारब्ध तो उनका पूरा हुआ नहीं तो वो प्रेतात्मा बन जाते हैं। तो प्रेतात्मा बनेंगे तो उनका स्थूल शरीर तो होता नहीं है और वासनाएं जो हैं वो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, वो होती हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर की आकृति को धारण करके और घूमता रहता है, इसीलिए उसको प्रेत बोलते हैं, घूमता फिरता रहता है। जहां उसकी वो वासनाएं पूरी होंगे उसी आदमी पर चढ़ बैठेगा अगर उसकी विल पावर कम है, तो फिर वो प्रेत उतारो भूत उतारो उन लोगों के पास जाना पड़ता है। वैसे जो परमात्मा का चिंतन करते हैं उन पर कोई भूत प्रेत नहीं आता है, लेकिन बात समझाने के लिए बात हो रही है कि ये सूक्ष्म शरीर जो है यही भोग का साधन है, स्थूल शरीर तो कर्म का साधन है। वासनाएं सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। अच्छा फिर एक और शरीर भी है, उसको बोलते हैं कारण शरीर। वो कहां रहता है? तो जैसे आपने बीज बोया जमीन में, तो उसमें से मतलब बीज फटा, फट करके उसमें अंकुर निकला, जड़ें निकली, अंकुर निकला, अब वो पेड़ बन गया। बीज तो नष्ट हो गया लेकिन नष्ट नहीं हुआ, वो पूरे पेड़ में समा गया। और फिर नया बीज जब पैदा हो जाएगा तो उसकी पूर्णता हो गई, उस बीज की पूर्णता हो गई। आम का बीज आपने बोया, अब पेड़ पर जब आम लग गए तो बीज तो बोया था एक और आम लगे हजार मान लो, तो उस एक बीज की पूर्णता हो गई। तो इसी को कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर कहीं रहता नहीं है, वो पूरे सूक्ष्म शरीर में व्याप्त हो जाता है। वो जब गर्भाधान होता है तब कण के रूप में रहता है, उसमें स्थूल भी रहता है, सूक्ष्म भी रहता है, कारण भी रहता है, लेकिन वो कारण ही विकसित होकर के फिर पहले सूक्ष्म बनता है, फिर विकसित सॉलिड होकर के फिर स्थूल बन जाता है। स्थूल में भी निकलता तो छोटा सा है और फिर 20-25 बरस तक फिर बढ़ता रहता है। ये कैसा बीज भगवान ने बनाया है, सारे बीज एक जगह जहां बोते हैं वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन ये जंगम है, चलता फिरता भी बढ़ता रहता है, ये ऐसा बीज है। और चलता फिरता ही नहीं, मर भी जाएगा तो लोक लोकांतरों में भी ये बीज ले जाने वाला है। तो कारण शरीर हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसको इसलिए लिंग शरीर बोलते हैं। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर। स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है मरने पर, और लिंग शरीर जो है माने कारण सहित सूक्ष्म शरीर वो चल देता है, निकल जाता है। ईश्वर की इच्छा से गया तो उसके संविधान के अनुसार जाएगा, और अपने आप मरा है तो भटकेगा वो अपनी वासनाओं के अनुसार। अब आ जाओ तो ये बात हमको जो समझानी थी वो ये थी कि ये अविद्या, कामना और कर्म ये एक बीज है, कैप्सुलाइज्ड बीज है, अविद्या, कामना और कर्म। और ये शरीर में प्रविष्ट होता है गर्भ में, और बस वो फिर निकलते निकलते जिस 100 वर्ष तक की उम्र मान लो तो अपना काम करता रहता है। इसी को प्रारब्ध बोलते हैं, और कहीं से कोई प्रारब्ध लिखित थोड़ा ही अगर माथे पे कहीं लिख गया हो, वो जो उसकी प्लानिंग हो गई वो प्लानिंग को ही प्रारब्ध बोलते हैं। अब कंप्यूटर में जैसा सॉफ्टवेयर आपने डाला है उसी के अनुसार काम करेगा या और भी दूसरा काम कर देगा, उसी के अनुसार होगा ना। तो ये प्रारब्ध माने सॉफ्टवेयर है, वो तो पढ़ चुका, उसमें टेंडेंसीज होती हैं, उन्हें आप नए कर्म के द्वारा मोड़ भी सकते हैं। ये मशीन में तो ये ताकत नहीं है, लेकिन मनुष्य चूंकि चैतन्य प्रधान है इसलिए इसमें ये ताकत है कि टेंडेंसीज को तो नहीं बदलेगा लेकिन उनको मोड़ सकता है। तो जागृत अवस्था में क्या है, ये जो स्थूल शरीर है ये तो अधिभूत है, और जो सूक्ष्म शरीर है ये अध्यात्म है, और जो कारण शरीर है ये जीवात्मा है, यही बीज है। महर्षि का आपने लेख पढ़ा होगा, एक जीव और बीज, अक्षर तो वही है दोनों में, जीव ज ई व और बीज उल्टा कर दो तो बा ई ज बीज हो गया। तो चेतन की प्रधानता से जिसको जीव बोलते हैं, जड़ की प्रधानता से उसी को बीज बोलते हैं। तो जब तक ये जीव कोश रहता है तब तक बीज में शक्ति रहती है कि नए नए शरीरों को उत्पन्न करता है। अब बीज से पहले जीव में आ जाओ, और फिर जीव को, जीव में जो अविद्या है उस अविद्या को यदि नष्ट कर दें, जैसे चने को यदि अग्नि में भून दें तो उसकी आगे की संतति पर समाप्त हो जाती है। वो पेट तो भर देगा, भुना हुआ चना आपका पेट तो भर देगा, लेकिन वो खेत में बोने से उसमें से अंकुर पैदा नहीं होगा, पुनर्जन्म की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। और जिनको पुनर्जन्म नहीं चाहिए मान लो तो ना करें वो उसको, लेकिन भाई ज्ञान मार्ग में तो मोक्ष इसी को ही कहते हैं। जीवन मुक्ति उसका आनुषंगिक फल है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है यह, मेन प्रोडक्ट जो है उसका वो पुनर्जन्म की समाप्ति है। अच्छा, अब स्वप्न में आ जाओ, जागृत अवस्था को छोड़ दो, तो अविद्या, कामना और कर्म, जब सो गया तो कर्म तो छूट गया, अब क्या रह गई? अविद्या और कामना रह गई। तो कामना बिना कर्म के सुख दे सकती है कि नहीं? अरे देती है ही, बैठ करके मनोराज्य करते हैं। शेख चिल्ली की कथा तो सुनी है या? वो पीपा लेकर चल दिए, किसी का मजदूरी करते थे, 2 रुपए मिलने थे उन्हें मजदूरी के, तो सोचते जा रहे थे मैं जाऊंगा 2 रुपए मिलेंगे, फिर उससे मैं बकरी खरीदूंगा, फिर और बकरियां बेच करके फिर और पैसे आएंगे, फिर डेयरी चलाऊंगा, फिर मकान बनाऊंगा, फिर ब्याह करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे पैसे मांगेंगे, तो मैं कहूंगा धत। अब वो जैसे ही उसने धत बोला, सोई वो पीपा नीचे गिर पड़ा, तो मालिक ने कहा कि तैने मेरा तेल खराब कर दिया। बोले सरकार, आपका तो तेल एक पीपा खराब हो, मेरी तो सारी दुनिया ही चली गई। तो ये जो मनोराज्य होता है इसमें तो बहुत सुख होता है। पुरानी पुरानी बातें आप याद करने लगो, भविष्य की बात आप याद करने लगो, बहुत सुख होता है। तो ये स्वप्नावस्था क्या है? कर्म तो है नहीं वहां, क्योंकि कर्म तो स्थूल शरीर से होता है। तो बस वो या तो मनोराज्य भूत का होता है और या तो मनोराज्य भविष्य का होता है। स्वप्न दोनों प्रकार के होते हैं। ज्योतिषी लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। अच्छा, ऐसा सपना देखा तुमने तो भाई तुम्हारा ये हो जाएगा। अब चाहे होगा कि नहीं होगा, लेकिन डरा तो देते ही हैं। तो दोनों तरीके के सपने होते हैं, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, तो वो तो जागृत में भी शेडोज आ जाती हैं, सपने की बात नहीं है। और तो 2 रह गए, अविद्या और कामना, ये स्वप्नावस्था है। अच्छा, मान लो कि कामना भी खत्म हो जाए तो क्या रह जाएगी? अविद्या। तो सुषुप्ति में क्या रह गया? किसी से भी पूछ लो, मूर्ख से मूर्ख और विद्वान से विद्वान, सुषुप्ति में आपको क्या अनुभव हुआ? बोले कुछ नहीं। कुछ नहीं माने तो अविद्या होता है और क्या। वह मतलब तो उसका यह था कि हमने जागृत का और स्वप्न का कुछ अनुभव नहीं किया, लेकिन कुछ अनुभव ही नहीं किया ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ नहीं का तो अनुभव किया ना कि कुछ नहीं। बोले यहां घड़ा है कि नहीं है, कैसे मालूम? क्या होता तो दिखता नहीं? तो बोले कि नहीं तो दिख रहा है ना तुमको, तो तुम्हारे दिखने का थोड़ी लोप हो गया। घड़े का तो लोप हो सकता है, जागृत और स्वप्न तो घड़े की तरह से हैं, वो तो नहीं दिखते सुषुप्ति में, लेकिन जो ज्ञान शक्ति है उसका लोप थोड़ी होता है। दूसरी बात यह कि सुख तो वहां भी होता है सुषुप्ति में, अगर सुख न हो तो गोली खा खा के लोग क्यों सुषुप्ति में जाए? अरे महाराज, अगर नींद ना आवे तो आदमी पागल हो जाता, निद्रा तो बहुत आवश्यक है, भले ही तमोगुण तमोगुण बोले हमेशा। हमारी स्थिति में तमोगुण का बहुत महत्व है। अब आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, तो किस वजह से बैठे हैं? तमोगुण की वजह से बैठे, नहीं तो रजोगुण आएगा तो हिलना शुरू कर देंगे। माइंड स्थिर है, शरीर स्थिर है, ये स्थिरता जो है यही तो तमोगुण है। अच्छा, जिनका मन चंचल होता है ना, तो उनके शरीर से मालूम पड़ जाता है, क्योंकि हर चीज का हर एक चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। खैर, तो अब सुषुप्ति पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये तीन विभाग किए कि जागृत अवस्था में अविद्या, कामना और कर्म तीनों रहते हैं, स्वप्न अवस्था में अविद्या और कामना सिर्फ दो ही रहते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में सिर्फ अविद्या रहती है। अब बोले आत्मा किस अवस्था में रहता है? तो बोले यही तो समझाना है। समझाना यह है कि भले ही आप इसको ये समझ रहे हो कि ये विश्व है और ये स्वप्न वाला तेजस है और सुषुप्ति वाला प्राज्ञ है, नाम बदल गए हैं, लेकिन है ये आत्मा ही, भेष बदल बदल करके आया है। इसका आवरण हटा के देखो तो वही आत्मा है। वो आत्मा लोग कथा सुनाते हैं ना कि एक भगत जी थे, तो भगवान ने सपना दिया कि आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा। बड़े खुश, सारा मकान धोया ऊपर से नीचे तक सब, और घर में पकवान बनाए और दरवाजे पर जाकर बैठ गए कि भगवान आ रहे होंगे। अब वो जिस रूप के उपासक थे तो उसी रूप में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएंगे। थोड़ी देर में एक भिखारी आया, बाबूजी कुछ खाने को दे दो। बोले भट भाग्या, शाम को आना, अभी तो भगवान। फिर दोपहर को एक बाबा आया, भिक्षाम दे। बोले आज इस समय भिक्षा नहीं मिलेगी, पहले भगवान का भोग लगेगा तब मिलेगी। वो भी चला गया। फिर एक रोगी आया, उसको भी भगा दिया। शाम हो गई, भगवान तो आए नहीं। अब वो बड़े परेशान, भगवान के सामने गड़गड़ाने लगे, रोने लगे। तो फिर भगवान ने सपना दिया, बोले आपने आप आए नहीं आप। तो बोले मैं तो तीन तीन बार आया, तैने पहचाना ही नहीं, तो मैं क्या करूं। भिक्षुक के रूप में आया, महात्मा के रूप में आया, रोगी के रूप में आया। एक बार क्या हुआ आश्रम में, महाराष्ट्र के समय की बात है, तो शायद साढ़े नौ का टाइम होगा। तो एक आदमी आया, बोला महाराज मैं तो बहुत भूखा हूं, तीन दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। अब वो झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, लग भी रहा था उसके शरीर से कि हाँ खाया नहीं, तीन दिन से नहीं खाया होगा, एक दिन से नहीं खाया होगा, भूखा था। तो बोले महंत जी से कहो ना। तो बोले महंत जी से कहा था, वो कहते हैं कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया, उसके बाद जो है तुमको मिलेगा। वो तो 11:30 बजे भोग लगेगा। तो बोले पहली पंगत जब उठ जाएगी तब मिलेगा, 12:30 बज जाएंगे। महाराज जी ने महंत जी को बुलाया, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा तुम्हें मंदिर में भोग लगाने का तो है, और सामने ये भिक्षुक के रूप में, भूखे के रूप में भगवान खड़ा है, आप उसमें से कुछ खाने को मत दो, ठीक है कल का रखा होगा उसमें से दे दो, लेकिन कुछ सेवा तो करो ना इनकी। बोले महाराज वो तो गायों को पड़ जाता है सुबह, जो कुछ बचता है वो कुछ नहीं है। तो बोले फिर पहले इसको दो भोग पिछला। तो ये विश्व तेजस प्राज्ञ सिर्फ नाम है, है ये आत्मा ही। साक्षी की जीवन मुक्ति नहीं होती, जीवन मुक्ति तो इसी में ही होती है जो इस समय बंधा हुआ है। बस इस पे जो आवरण चढ़ा हुआ है वो हटा दो तो साक्षी ही है। अभी बताया ना कि जागृत पुरुष और जागृत अभिमानी और जागृत दृष्टा, ये तीन नाम हैं, एक के एक भीतर है। बाहर का आवरण हटा कर देखो वही साक्षी आत्मा बैठा हुआ है। ये बताना चाह रहे हैं, ये सारा उपनिषद का जो लक्ष्य है वो ये है। कोई नई चीज क्रिएट करके आपके सामने नहीं ला रहे हैं। कल स्वप्न स्थान की बात चलाई थी तो यहां तक तो पहुंच गए थे कि प्रविव्यक्त भूख, तो सूक्ष्म शरीर में जो भोग होगा 19 मुक्त तो हो गए उसके, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भोग्य क्या होगा? सूक्ष्म शरीर किस का उपादान क्या है? इस सूक्ष्म भूत, ये जो बाहर का शरीर है स्थूल शरीर, इसका उपादान तो है स्थूल भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के मिले जुले रूप जो हैं, ये तो बाहर के शरीर का उपादान है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये अलग अलग पांचों भूत जो हैं वो अलग अलग रूप से, जैसे आंख, आंख का उपादान सिर्फ रूप है, उसमें पृथ्वी नहीं है। ये गोलक जो दिखती है ना, ये तो बाहर है, बाहर के स्थूल शरीर में है, ये तो पंचीकृत है, लेकिन जो भीतर इसकी शक्ति है वो सूक्ष्म भूत है, रूप तन्मात्रा बोलते हैं। ऐसी कान की इंद्रिय भी जो भीतर है वो शब्द तन्मात्रा का कार्य है। पूरे शरीर पे जो खाल मड़ी हुई है त्वक इंद्रिय, इसकी वायु तन्मात्रा है। ऐसे तो ये पांचों भूतों की तन्मात्राओं से ये बना हुआ है। अब हमने मन में सोचा लड्डू खा लें, अब भाव किया लड्डू भी आ गया, मन में आ गया। तुलसीदास जी ने तो लिखा कि मन मोद कहीं की भूख बुताई, मन के लड्डू खाओ तो उससे कोई भूख थोड़ी मिटेगी, क्योंकि भूख तो स्थूल शरीर में लग रही है और मन के लड्डू जो है वो तो सूक्ष्म भूत है, तो वो तो जो स्वप्न का अभिमानी है उसको तृप्त करेगा, जागृत के अभिमानी को तो तृप्त करेगा नहीं। तो लड्डू आ गया, तो सपने में अगर हम लड्डू खाएं तो वही स्वाद आएगा जो जागृत के लड्डू का, क्योंकि उसमें संस्कार जागृत वाला है मौजूद। लेकिन जागृत में यदि आप मन के लड्डू खाओगे तो कुछ नहीं आनंद है, या तो स्थूल लड्डू चाहिए। तो देखो इन सब चीजों से ये रहता है कि ये जागृत में जो कुछ भी हम लोग करते हैं ये गलत नहीं है। ये वेदांत सुन सुन करके लोगों में एक गलत धारणा भी हो जाती है, अरे हम तो सब बावरे ही हैं, संसार के पीछे भागे भागे फिर रहे हैं। ये तो स्थूल शरीर जब तक है इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप सेल्फ एफर्ट छोड़ सकते हो, ईश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ, वो बात दूसरी रही, लेकिन वो तो सबके बस की बात नहीं है। वो तो महात्मा तो सब छोड़ ही देते हैं, उनका पालन पोषण करने वाला तो भगवान हो जाता, बाकी को तो कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ता। तो ये प्रविव्यक्त भोग माने होता है सूक्ष्म भूत, उन्हीं का भोग करता है और उन्हीं से वो तृप्त हो जाता है सपने में, जागृत में नहीं। अब बोले भोक्ता कौन है इसका, कि तेजसो द्वितीय पाद यहां छोड़ा था का, तेजसो द्वितीय पाद, तेजस है भोक्ता इसका। अब तेजस शब्द का क्या अर्थ है, तेज, तेज से उत्पन्न समझ लो, तेज वाला, तेज रूप, चमकीला। तो भाष्यकार ने और टीकाकारों ने ये लिखा है कि जैसे हम जागृत अवस्था में तो कर्म करके कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, स्वप्न अवस्था में कर्म नहीं है, सिर्फ भोग है, सूक्ष्म सूक्ष्म भोग है, उसके लिए करना कुछ नहीं है। तो उदाहरण दिया उसमें कि सिनेमा में आप जाकर के बैठ गए, अब वहां पर्दे के ऊपर सभी कुछ घटनाएं जागृत अवस्था की तरह से हो रही हैं, लेकिन आप वहां क्या देखते हैं, सिर्फ रोशनी और रोशनी की गति में आकृतियां। कभी जहां से रोशनी आती है ना, सिनेमा ऑपरेटर रूम जो होता है उसकी तरफ जरा देखना और फिर पर्दे की तरफ देखना, तो वो जो प्रकाश आ रहा है वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी दाएं जाएगा, वो बस प्रकाश ही इधर उधर होता रहता है और हमको भ्रांति होती रहती है कि ये शेर आया, ये इसने बंदूक मारी, इसने ये किया, इसने वो किया। तो जागृत जैसा सारा व्यवहार तो बिना कर्म के केवल प्रकाश में, आत्म प्रकाश में, बिना कर्म के केवल आत्म प्रकाश में जो भोग सामग्री का अनुभव करना है, करने वाला है, उसको तेजस बोलते हैं। और कर्म करके भोग करने वाला वो स्थूल भोगों को भोगता है, उसको विश्व बोलते हैं। तेजस द्वितीय पाद, ये इसका दूसरा चरण है। अब नारायण आओ तीसरे चरण में प्रवेश करें, नहीं अभी इसमें वो रह गया ना समष्टि का, ये तो व्यष्टि की बात हो गई, अब समष्टि में चलो। तो स्थूल शरीर तो आपने छोड़ रखा है, तो सारे संसार का स्थूल शरीर छोड़ दो फिर, तभी तो समष्टि में जाएंगे। तो सारे संसार का स्थूल शरीर छूटेगा तो क्या बचेगा, बोले देवी देवता स्वर्ग नरक पाताल लोक फलाना लोक, जितने लोक लोकांतर हैं और उनमें जो रहने वाले देवता हैं, मनुष्य हैं, सभी प्रकार के लोक हैं, 14 भवन हैं। तो इस स्थूल भवन को छोड़ करके बाकी जितने भी लोक हैं ये सब कहां है, ये सूक्ष्म जगत में है, स्थूल जगत में नहीं है। अब कहते हैं ना कि चंद्रमा पे गए तो वहां तो हमको कुछ मिला नहीं, खार खड्डे ही हैं, तो इसलिए ये पुराण गलत है। अरे तो पुराण उसको चंद्रलोक कब बता रहे हैं पुराण तो कह रहे हैं कि ये चंद्रमा जिसका स्थूल शरीर है, इसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसका जो अभिमानी है वो है चंद्र देवता। उस लोक में गए क्या सूक्ष्म में, तो सूक्ष्म में तो नहीं जा सकते, हां मन से जा सकते, योगी लोग जा सकते हैं। तो अब ये समष्टि का विचार कर रहे हैं, समझ लो सारी दुनिया खत्म, सिर्फ वो सूक्ष्म लोग हैं उसमें हम विचरण कर रहे हैं। स्वर्ग में ये है, वैकुंठ में ये है, उसमें ये है, उसमें ये है, बड़े गुण गाने गाए जाते हैं, सुनने को मिलते हैं, वो सब आपको साक्षात होने लगेंगे नारायण। यही तो इसी को बोलते हैं हिरण्यगर्भ, वहां उसको तेजस का नाम बदल गया हिरण्यगर्भ। मोटे रूप से हिरण्यगर्भ बोलते हैं आदि जीव। जब ये सृष्टि की रचना हुई तो शुरू शुरू में जो जीव पैदा हुआ, जो पूरी सृष्टि के सूक्ष्मता को देख सकता था, उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। अब फिर तीन विभाग कर लो, स्वप्न पुरुष, स्वप्नाभिमानी, स्वप्न दृष्टा। तो स्वप्न पुरुष तो वो है जो सपने का मैं भोग कर रहा है, और स्वप्नाभिमानी पूरे सपने का, एक शरीर का भी और बाकी सब शरीरों का भी, देवी का, देवता का, सबका जो जान रहा है नारायण। और दृष्टा जो है वो संपूर्ण सूक्ष्म जगत को देखता है, भोगता नहीं है, साक्षी दृष्टा है। अब बात कहां पहुंचानी है कि जो जागृत का दृष्टा है वही स्वप्न का दृष्टा है, वो आत्मा है। अभिमानी और पुरुष इनको छोड़ना, ये हमारे स्वरूप नहीं है, ये तो शरीर के साथ है, शरीर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनमें व्यतिक्रम भी हो जाता है। अब देखो लोग रिटायर हो जाते हैं लेकिन नेम प्लेट लगा देते हैं बाहर, इंजीनियर रिटायर्ड। अरे अब तुम इंजीनियर हो ही कहा, IAS रिटायर्ड। अब महात्मा लोग भी लगाने लगे हैं तो अरे भाई, निर्विशेष आत्मा जो है उसको पकड़ना है, जिसमें कोई विशेष नहीं है, किसी के साथ जिसका कोई भेद नहीं है। तो विश्व जागृत में और तेजस स्वप्न में, और समष्टि में वैश्वानर विराट और हिरण्यगर्भ। अब जरा कारण शरीर की तरफ चलते हैं। कारण शरीर का दर्शन नहीं हो सकता, वो पहले भी मैं सुना चुका हूं, आपने सुना भी होगा शायद। बाबा रामघाट में थे उड़िया बाबा जी महाराज, तो महाराष्ट्र भी वहां थे, तो वेदांत पर प्रवचन करते थे। तो वहां एक आर्य समाजी थे, उनको सब बाबूजी बोलते थे, गांव में ज्यादा थोड़ा बहुत पड़ जाता तो बाबूजी कहते थे। बड़े तार्किक थे आर्य समाजी, तो थे तार्किक बहुत थे। क्योंकि हम तो रात को जल्दी सोने वालों में से हैं, तो 10 बजे के करीब मैं तो सो चुका था। अब वो बाबूजी आए और दरवाजा खटखटाया, मैं उठा, भैया कौन? तो मैं हूं। अरे बाबूजी आप इस समय? कि हाँ, आपसे कुछ बात करनी है। बोले सुबह नहीं कर सकते थे? कि नहीं, इसी समय करनी। अच्छा आओ बैठो। बैठ गए, नहीं बैठे नहीं, तो बोले एक बात बताओ, तुम रोजाना कहते हो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म तो उसको कहते हैं जो सारी सृष्टि की रचना करे। तो आप हमारे सामने सृष्टि की रचना करके बताओ, तब हम आपकी बात मानेंगे कि मैं ब्रह्म हूं। तो जो कि मैंने कहा बाबूजी बैठो तो सही, कम से कम इतनी गंभीर बात बैठ के ही बताई जा सकती है। बैठ गए तो मैंने कहा कि अच्छा मान लो, रचना तो मैं तब करूंगा जब पहले ये सृष्टि समाप्त हो जाए। तो कल्पना करो कि सृष्टि समाप्त हो गई। अच्छा बोले कर ली कल्पना। तो बोले अब देखो मैं सृष्टि कर रहा हूं। तो बाबूजी बोले हमको तो नहीं मालूम पड़ते। बोले मालूम कैसे पड़ेगी, जब सृष्टि समाप्त हो गई तो तुम्हारे भी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब समाप्त हो गई, अब देखोगे किससे कि मैं सृष्टि कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो कारणता का अनुभव साक्षात नहीं होता है। ये सृष्टि कैसे बनी, अब ये अभिमानी लोग भले ही कह दें कि हमने गॉड पार्टिकल निकाल लिया मशीन में से, ला रहे हैं, माने ईश्वर भी एक छोटा सा पार्टिकल है। सारे रिलीजन्स और सारी आस्तिक फिलोसफी जो है वो सब ईश्वर को मानती हैं किसी न किसी रूप से, और सृष्टि के रचयिता के रूप में ही मानती हैं, परंतु देख कोई नहीं सकता। हाँ, वर्तमान में जो सृष्टि हो रही है उसको देख करके ये अनुमान होता है कि भाई हमने तो ये बनाई नहीं, तो किसी ने तो बनाई है, तो अनुमान प्रमाण से ही मानते हैं कि ऐसी सारी सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर होगा। लेकिन अनुमान प्रमाण नहीं होता जब तक कि वो प्रत्यक्ष न हो जाए, वो हो नहीं सकता। इसलिए वेदांत में इस शास्त्र वचन को अध्यारोप मानते हैं। बोले ये समझ में आ गया यदि कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, ये उसका कार्य है और ये इसका स्वरूप है, कार्य और स्वरूप में अंतर कर लेना। कार्य तो ऑफिस में ही रह करके होता है, अब घर पे भी तुम फाइल लेकर के बैठे हो तो समझ लो कि घर में लड़ाई झगड़े की नींव आपने घर में तो फ्री रहना है ना। तो ईश्वर क्या हर समय सृष्टि करता रहता है? वो तो फिर पराधीन हो गया, तो उसकी मौज है, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो जब नहीं करता है तब उसका क्या स्वरूप है? तो जो उसमें अज्ञान तो है नहीं, तो जब नहीं करता है तो जो उसका स्वरूप है वही करते समय भी रहता है। तो सच्चिदानंद घन जो उसका स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, वो उसका कभी अलहदा नहीं होता। यही बात समझाने में सारे शास्त्रों में सृष्टि प्रक्रिया का अर्थ, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये शास्त्र वचन है। तो इसका दर्शन थोड़ा थोड़ा यदि होता है तो सुषुप्ति में होता है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहां तो फिर यही हाथ में लगता है ना कि कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ वहां। तो पहले सुषुप्ति की परिभाषा उपनिषद बोलता है, ये पांचवा मंत्र है। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूता प्रज्ञान घनुएव आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। कहते हैं सुषुप्ति किसको कहते हैं, ये परिभाषा करने की क्यों जरूरत पड़ी? स्वप्न क्या होता है, जागृत क्या होता है, इसकी तो परिभाषा उपनिषद ने की नहीं है, सुषुप्ति की परिभाषा कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये ऐसा विषय है, आजकल के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सुषुप्ति होती ही नहीं है। देखो तो सारा वेदांत विचार तो सुषुप्ति के ऊपर ही आधारित है, स्वप्न और सुषुप्ति के ऊपर। तो जड़ से ही वो इसको काटना चाहते हैं, बोले सुषुप्ति होती नहीं। बोले क्योंकि अगर सुषुप्ति हो जाए जिसमें कुछ पता ही नहीं चले, तो फिर चाहे एटम बम गिर जाए, चाहे कुछ भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, उठ नहीं सकता आदमी, वो ऐसा तर्क करता है। लेकिन खट भी हो जाए तो अभी सुषुप्ति टूट जाती है, जिसको आप सुषुप्ति कहते हो। इसका मतलब यह है कि भीतर भीतर एक सबकॉन्शियस करंट जो है चेतना की, जागृत अवस्था की, चलती रहती है, तो गहरी नींद में सोने पर भी अगर कोई उसका नाम लेकर के पुकारे तो खट से उठ बैठता है। तो महाराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि अगर सुषुप्त था, गहरी नींद में था, तो किसी ने बोला देवता टूट जाओ, तो अगर वो सुषुप्त था तो उसे सुनना नहीं चाहिए था, फिर उठा क्यों? और अगर उठा तो सुषुप्त नहीं था। दोनों तरीके से मुसीबत है। तो उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा तो वो तो हत्ते से ही पतंग काट देते थे। ये मुहावरा सुना, हत्ते से पतंग काटना? पतंग उड़ाते हैं ना, तो डोरी तो चांद इतनी लंबी हो लेकिन रहती तो हाथ पे ही है। तो बोले यहीं से अगर कट जाए हाथ पे से तो पतंग तो कटी गई, अब चाहे कहीं भी जाओ ना। माने मूल से ही उसका समाधान करना, ये हत्ते से पतंग काटना। तो उन्होंने कहा कि तुम जागृत को स्वप्न और सुषुप्ति को जागृत और स्वप्न से जोड़कर देखते ही क्यों? एक स्वतंत्र चेतना है, जैसे जागृत का स्वप्न से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही सुषुप्ति का भी जागृत से कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्र चेतना है। और उसका वर्णन कोई इसलिए नहीं कर सकता कि वहां अज्ञान है। बोले क्या मालूम पड़ा? क्या हमें पता नहीं क्या मालूम पड़ा, कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता ही नहीं है तो इदमित्थम ऐसा ही है वहां पे या ऐसा नहीं है, दोनों ही तरीके से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए शब्द से उसको न खंडन कर सकते हो न शब्द से उसका समर्थन कर सकते हो। शास्त्र में चूंकि सुषुप्ति का वर्णन है, और भैया ऐसा है अनुभव शायद आप लोगों को भी होगा, हमको तो है इसका, अब ये अनुभव मौका लगा तो कल बता देंगे 8:30 बजे ये प्रसंग सुषुप्ति का थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें 2, 5 और 6 दो मंत्र हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।